शहरों में सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि अभी अर्बनाइजेशन जो है वो फास्ट हो रहा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इन सिटीज में फंडिंग, टेक्निकल एबिलिटी और गवर्नेंस तीनों का अभाव देखने को मिल रहा है। और अगर हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो हम ये देख रहे हैं कि मीडियम और स्मॉल टाउन्स जो है उनके ऊपर ध्यान देख उनका सस्टेनेबल डेवलप अर्बन प्लानिंग के साथ करना बहुत जरूरी हो रहा है।
Hello and a warm welcome to a very special podcast series, Unusual Suspects. I'm your host, Gaurav Chaudhary. This is a series about unraveling stories of entrepreneurs, investors, professionals who are disruptors, yet not in your face. Their disruptions have consistently delivered on the purpose and the mission they've embarked on. Their values are as strong as the mission. While they're ruthless in pursuing their ambition, they don't stray from being leaders who are not just admired for the vision and relentless pursuit, but also for how they're building an ecosystem of believers who consistently push the boundaries. In each episode, I speak to one such leader, talking to her or him or them about their businesses, lives, inspirations, interests, challenges, pivot moments and turning points, successes, failures, agonies and ecstasies, and of course, the little joys of life and work. It is as much about their personal life stories as about their entrepreneurial, professional and philanthropic journeys. Unusual Suspects streams on earshot.in, spotify.com, Apple Podcasts, YT Music, moneycontrol.com, and a host of other podcast streaming platforms and directories. For this episode, I'm delighted to have Ms. Bharati Bhonsle. Bharati ji is currently the program manager at Mahila Housing Trust, a grassroots development organization. Bharati ji holds over 25 years of experience in civil engineering and specializes in climate resilience and sustainable water resource management, overseeing housing, water, and sanitation programs in Gujarat, Madhya Pradesh, and Maharashtra. She also has a remarkable track record in the upgradation of slums and low-income housing planning. Bharati ji has played a key role in implementing significant initiatives such as the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban. Her work also includes Swachh Survekshan initiatives, fostering collaborations with government bodies and spearheading impactful urban development projects. Welcome to Unusual Suspects, Bharati ji. Delighted to have you on the show.
Thank you, Gaurav ji.
Bharati ji, ek bahut hi bunyadi sawal se start karte hain. Let's start with your work with Mahila Housing Trust. Aap hame thoda MHT ke kaam aur focus area ke bare mein bataiye, Bharati ji.
Gaurav ji, Mahila Housing Trust ek 30 saal purani socio technical organization hai aur hum gareeb aur shramjeevi mahilaon ke liye unke ghar, basic amenities, क्लाइमेट चेंज और पार्टिसिपेटरी अर्बन गवर्नेंस जैसे मुद्दों पे काम करते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे बहनों के लिए, गरीब और श्रमजीवी बहनों के लिए, उनका घर ही उनका का स्थल है, उनके लिए गोडाउन है और उनके रहने की जगह भी है। इसीलिए घर और बेसिक एमिनिटीज का उनके पास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उनके बच्चों के हेल्थ के लिए, उनके इनकम के लिए, उनके अपने हेल्थ के लिए और सोशल स्टेटस के लिए भी काम में आता है। तो महिला हाउसिंग ट्रस्ट अक्रॉस साउथ एशिया काम कर रहा है और हम 41 से ज़्यादा सिटीज़ में और नेपाल और बांग्लादेश और भारत के 11 राज्यों में कार्यरत है।
भारती जी, महिला हाउसिंग ट्रस्ट को किन यूनिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है अलग अलग शहरों में, क्योंकि आप ढेर सारे शहरों में आप लोगों के काम चल रहा है, अलग अलग शहरों में किस टाइप की चुनौतियां आते हैं, किस टाइप की चैलेंजेस फेस करना पड़ता है?
गौरव जी, जैसे मैंने बताया कि हम 11 से ज्यादा राज्यों में है और 41 से ज्यादा सिटीज में कार्यरत है। तो जैसे हम मेगा और मेट्रो सिटीज में अहमदाबाद है, सूरत है, दिल्ली है, जयपुर है, इन शहरों में काम कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे देखा जा रहा है कि मीडियम टाउन्स जो है, जिनका पॉपुलेशन 1 लाख से 6 लाख तक है और ज्यादातर ये भारत के 1/3 शहर है, तो इन शहरों में सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि अभी अर्बनाइजेशन जो है वो फास्ट हो रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इन सिटीज में फंडिंग, टेक्निकल एबिलिटी और गवर्नेंस तीनों का अभाव देखने को मिल रहा है। और अगर हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो हम ये देख रहे हैं कि मीडियम और स्मॉल टाउन्स जो है उनके ऊपर ध्यान देके उनका सस्टेनेबल डेवलप अर्बन प्लानिंग के साथ करना बहुत जरूरी हो रहा है।
भारती जी, एक सवाल अमलनेर अमलनेर के ऊपर, आपने अमलनेर को ही क्यों चुना डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, और अमलनेर में MHT की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप लोगों ने कम्युनिटी को एंगेज किया, और कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए भारती जी?
अमलनगर की हमारी जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा रोचक भी है, और उसकी शुरुआत भी जो हुई वो स्वच्छ भारत मिशन में एक छोटे से इनिशिएटिव से हुई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जब स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है तब ओपन डेफिकेशन फ्री सिटीज को करने के लिए उन्होंने कुछ 30 शहरों का लिस्ट हमको दिया था, और उन 30 सिटीज में जहाँ पे हैंड होल्डिंग की जरूरत है, उनका परफॉर्मेंस लो है, ऐसे वो सिटीज थे, और वहाँ उसमें से एक अमलनेर शहर था जिसका पॉपुलेशन 1 लाख है, और उस शहर को हमने चूज किया और वहाँ पे जाके हमने काम करना शुरू किया। अब जबकि हमारा अनुभव ये था कि हम बड़े शहरों में काम कर रहे थे, तो छोटे शहर में इस तरह के अमलनेर जैसे शहर में जब काम करना हमने शुरू किया तो सबसे पहले गवर्नमेंट से, सिटी गवर्नमेंट से वहाँ पे सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी था। तो गवर्नमेंट के साथ रेपो बिल्ड शुरू करने से शुरुआत हुई, और हमने जब शहर में देखा तो स्मॉल इनिशिएटिव ये था कि मेकिंग अमलनेर ओपन डेफिकेशन फ्री। तो उसके लिए चैलेंज तो सबसे पहले ये था कि जब तक हम इंडिविजुअल टॉयलेट का एक्सेस हर किसी को ना दें तब तक ओपन डेफिकेशन फ्री कागज पे ही रहने वाला था, एक्चुअल में नहीं होने वाला था। तो हमने देखा कि अमलनेर शहर में कितने स्लम्स हैं और उन स्लम्स में इंडिविजुअल टॉयलेट का क्या एक्सेस है। तो शहर में हमने सबसे पहले, जो कि महिला हाउसिंग ट्रस्ट का काम करने का तरीका है, हम गरीब और श्रमजीवी बहनों के साथ रह के काम करते हैं, उनका लीडरशिप बिल्ड करते हैं, उनको अलग अलग प्रकार की तालीमें दी जाती है ताकि उनको गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में पता चले और वो गवर्नमेंट के साथ खुद लायज करके अपनी समस्याओं का हल निकाल सके। तो इन टर्म्स में सबसे पहले हमने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू किया, उन बहनों को हमने ट्रेनिंग देना शुरू किया, जितने ओडी स्पॉट्स है अमलनेर में उनको मैपिंग किया, और इन्हीं बहनों के द्वारा, इन्हीं बहनों के लीडरशिप के थ्रू हमने इंडिविजुअल टॉयलेट का एक्सेस स्लम कम्युनिटीज में दिलवाना शुरू किया, और जो ओडी स्पॉट्स थे उनको कन्वर्ट, जैसे कि प्ले ग्राउंड हो गया, गार्डन हो गया, लाइवलीहुड स्पेसेस हो गए, उसमें उनको कन्वर्ट किया गया। तो ये बहनें जो है, उन्हीं में से कुछ बहनें वॉचडॉग कमिटी के थ्रू सिलेक्शन उनका हुआ, वो काम करती थी, सुबह 5 बजे जाके देखती थी, रात को 9 बजे जाके देखती थी कि कौन ओडी करने आ रहा है, और फिर उन लोगों को वो डायरेक्टली ट्रैक भी करती थी कि क्यों वो वहाँ पे आ रहे हैं, क्या समस्या है, कहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए नहीं टॉयलेट बन रहा है, कहीं पे पैसा नहीं है इसीलिए नहीं बन रहा है, कहीं पे योजनाओं की समझ नहीं है उसी के लिए नहीं बन रहा है, या कहीं पे बिहेवियरल चेंजेस का प्रॉब्लम है इसीलिए नहीं बन रहा है। तो वो सारे इश्यूज को उन्होंने एक एक करके टैकल किया, और आज की तारीख में जो है वो अमलनेर 97% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। और फिर जब ये काम ये बहनें कर रही थी तब उनको, और जो हम उनका कैपेसिटी बिल्ड कर रहे थे तब उनको रियलाइज हुआ कि सिर्फ ओपन डेफिकेशन करना और इंडिविजुअल टॉयलेट का एक्सेस देना वो ही जरूरी नहीं है, वहाँ पे मेन मुद्दा था वाटर क्राइसिस का। अमलनेर में 7 से 8 दिन के बाद पानी आता था, तो जब पानी की ही अछत है तो अगर हम इंडिविजुअल टॉयलेट बना भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडी भी आ रही है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत सब्सिडी मिल रही है, तो उसको सस्टेन करना कैसे, कितना मुश्किल होगा। और जबकि स्मॉल सिटीज पे ये बहुत जरूरी है कि जब तक आप पूरे सिटी लेवल पे उस प्रश्न को नहीं देखो तब तक वो प्रश्न का हल नहीं आएगा। तो इन बहनों के साथ, गवर्नमेंट के साथ, नगर पालिका के साथ बैठ के कुछ बातें पता चली कि पानी की अछत जो है उसके लिए तीन चार कारण महत्वपूर्ण है। एक था कि जो पानी का सोर्स था उनका, उनकी जो लोकल रिवर थी वो पेरिनियल नहीं थी, और ऐसे भी वो कम बारिश वाला क्षेत्र है, बारिश कम होती है वहां पे, तो और जो पानी वो सिटी के लिए ला रहे हैं वो बहुत दूर से ला रहे हैं, तो उनका जो पंपिंग कॉस्ट है पानी लाने का और रोज सिटी को प्रोवाइड करने का, वो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, नगर पालिका उसको एफोर्ड नहीं कर रही है। दूसरा था कि जो वाटर रिसोर्सेस है नेचुरल, काफी सारे पुराने, वो डिफंक्ट हो चुके हैं, उसके बारे में इतना कुछ किसी को पता नहीं है। और बिहेवियरल चेंजेस का भी एक था कि उस पर भी काम करना जरूरी था। तब जाके हमने पूरे सिटी लेवल का एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जिसमें हमने 3R अप्रोच, माने कि रिटेंशन, रियूज और रिचार्ज के माध्यम से ये एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार हुआ कि कैसे पानी की समस्या को हल किया जाए सिटी लेवल पे। तो उसमें से जो रिचार्ज वाला ऑप्शन था, उस एक एक मुद्दे को लेके काम शुरू हुआ। इन बहनों ने अपना सारे जियो स्पेशल मैपिंग करके जो डिफंक्ट वाटर रिसोर्सेस है, कहीं पे कुआं है, कहीं पे बोरवेल है लेकिन अब वो बंद हो चुके हैं, उन सबको मैप किया। उन सबको मैप करने के बाद उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिचार्ज कराया गया, और उसके बाद जो एनर्जी कॉस्टिंग वाली बात थी उसके लिए नगर पालिका के पंपिंग स्टेशंस जो है, उनके जो ESR है उनको सोलराइज किया गया ताकि उनका एनर्जी कॉस्ट जो है वो कम हो और वो जो बचत है वो सिटी के डेवलपमेंट के लिए काम में ला सके। तो इस तरह से ये जर्नी ओपन डेफिकेशन फ्री से लेके वाटर मैनेजमेंट तक आया। अब जब वाटर मैनेजमेंट तक वो जर्नी आया, तब इन बहनों को साथ ही साथ में हम क्लाइमेट चेंज क्या है, क्यों हो रहा है, उसकी असर क्या हो रही है और उसकी असर कम करने के लिए क्या करना चाहिए, मिटिगेशंस हो सकते हैं, तो ये सारा हम उन बहनों से चर्चा कर रहे थे। और वो बहनें अपने अपने एरिया के वाटर रेजिलियंस प्लान, क्लाइमेट एक्शन प्लान बना रहे थे। तब जाके एक और समस्या निकल के आई कि इतनी जो गर्मी हो अभी हो रही है उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए भी अगेन ये बहनें जो पहले वॉच डॉग कमिटी के तौर पे काम कर रही थी, अब वो वाटर मैनेजर्स बन गई थी, तो उन्होंने पर्यावरण सखी भी बनना तय किया और उससे हमारा काम आगे शुरू हुआ। गौरव जी,
भारती जी, MHT's मिशन इज टू एम्पावर वीमेन टू लीड द वे, ताकि अमलनेर में महिलाओं को कैसे एम्पावर किया गया ताकि वो अपने बात रख सके और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बना सके। इन महिलाओं ने कैसे MHT को काम को शेप किया है, आप अगर कुछ उदाहरण हमें दे सकते हैं कि नो गिव अस सम एग्जांपल्स को इंस्पायरिंग स्टोरीज जहां महिलाओं ने कलेक्टिव एक्शन से बदलाव लाने में मदद की है। भारती जी,
जैसे कि मैंने बात की कि ये जब वॉच डॉग कमिटी बन के ये महिलाएं जब काम कर रही थी, तो वो हर सुबह जाके देख रही थी ओडी स्पॉट पे कि कितने लोग वहां पे आए, फिर उन लोगों को वो डायरेक्टली फॉलो करके उन उसके सॉल्यूशंस निकालती थी। वैसे ही जब वाटर मैनेजर्स का, उन्होंने वाटर मैनेजमेंट का पूरा ट्रेनिंग लिया, जल चक्र क्या होता है, वाटर क्वालिटी कैसे होती है, ग्राउंड वाटर टेबल किस तरह से होता है, एक्वीफर क्या होते हैं, तो वो सब करने के बाद वो अगर उनके एरिया में कुछ डिफंक्ट वाटर रिसोर्सेस है तो वो नगर पालिका में खुद जाके एप्लीकेशन दे रही है। अगर वहाँ पे सीवेज का प्रॉब्लम है तो वो खुद जाके एप्लीकेशन दे के नगर पालिका के कौन से ऑफिसर को मिलना है, कहाँ पे मिलना है, कितने बजे वो अवेलेबल होंगे, अगर वो एप्लीकेशन उन्होंने दिया है तो उसका रिजल्ट जो है वो उनको कैसे लाना है और नगर पालिका को उस काम के लिए कौन से बजट हेड में से फंड निकालना है, वहां तक वो एप्लीकेशंस में लिखती है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो वहां पे एक ताड़ेपुरा करके स्लम है और वहां पे ओपन डेफिकेशन फ्री होने के बाद भी सुएज नहीं था, इसीलिए टॉयलेट यूज नहीं हो सकते थे। तो करीबन 2 साल तक कंटिन्यूअस बहनों ने उसका फॉलो करके उस एरिया में उन्होंने सुवेज लाइन जो है वो डलवा दी गई है। उसी तरह से अभी जो वाटर रिसोर्सेस हुए हैं, जैसे रिजनरेट हुए हैं वेल्स, और वो तो उनका वो हर मंथ उसका मॉनिटर कर रही है, उसका वाटर लेवल चेक कर रही है, ताकि वो साइंटिफिकली ये भी देख सके कि ग्राउंड वाटर टेबल भी कितना बढ़ा है। तो आज की तारीख में 3-4 सालों के बाद 1.3 से 1.5 मीटर तक वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो अमलने शहर का बढ़ा है। और यही बहनें हैं जो उसका मेंटेनेंस कर रही है नगर पालिका के साथ रह के। नगर पालिका ने उसके मेंटेनेंस का जिम्मेदारी तो लिया, लेकिन उनको बार बार उसके लिए एप्लीकेशंस देना, वो चीज उनसे करवाना, वो महत्व की भूमिका है ये बहनें कर रही हैं।
भारती जी सवाल पूछते हैं अमलनेर में नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की। यहाँ पे नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की इम्प्लीमेंटेशन से क्या बदलाव आया है, साथ ही नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस होती है रूरल और अर्बन एरियाज में, गांवों और शहरों में?
गौरव जी, जैसे वाटर मैनेजमेंट के बाद जब हम आगे देख रहे थे और हीट की जो गर्मी की जो समस्या देख रहे थे, तो तब तक ये नेचर बेस्ड सॉल्यूशन से ही इन चीजों को हम टैकल कर सकते हैं। वो चीज नगर पालिका, कम्युनिटी और MHT तीनों को ध्यान में आ गई थी। और इस तरह से नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में पर्टिकुलरली वाटर मैनेजमेंट का तो हम कर ही रहे थे, लेकिन अर्बन एफॉरेस्टेशन की बात आई जिससे हम टेम्परेचर, हीट आइलैंड कम कर सके। तो उसके लिए नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की जब हमने अर्बन एफॉरेस्टेशन का करने का जब सुझाव आया और हमने उस पे काम शुरू किया, तो हमने सबसे पहले डेवलपमेंट प्लान लिया। और डेवलपमेंट प्लान में कहाँ कहाँ पे ग्रीन स्पेसेस के लिए अवेलेबिलिटी है, इंस्टीट्यूशनल ग्रीनिंग हो सकता है कि नहीं, रोड ग्रीनिंग कैसे हो सकता है, वाटर बॉडीज को ग्रीनिंग कैसे कर सकते हैं, उस तरह से मिलके काम शुरू किया। और जैसे ही वाटर के लिए एक DPR बनाया था, वैसे ही ग्रीनिंग के लिए पूरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना, जिसमें से हम करीबन 9,000 से लेके अगर 25,000 तक हम अभी जो ग्रीन कवर है, ट्री कवर है अमलनेर शहर का, उसको लेके जाते हैं, तो 1 से 3 डिग्री का टेम्परेचर में फर्क देख सकते हैं और हीट आइलैंड इफेक्ट भी कम हो सकता है। वो एक चीज आई। और जब मैं उसको चैलेंजेस देख रही थी, तब ये था कि रूरल में जो है वो आपको जगह मिल जाती है, लेकिन अर्बन में उस तरह की स्पेसेस बड़ी अर्बन एफॉरेस्टेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती। इसीलिए डेवलपमेंट प्लान को साथ में रखते हुए उसको देखना बहुत जरूरी बन जाता है। तो वो एक चैलेंज था। और दूसरा चैलेंज जो जो है वो, जैसे अगर मैं फंडिंग की बात करूं, तो अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स हम CSR फंडिंग या कोई डोनेशन के थ्रू करना चाहते हैं, तब जो सोच है कि एक्स सैंपल आप 10,000 ट्री करने हैं और 50 to 60 रुपी या 30 to 50 रुपीज पर ट्री कॉस्ट हम आपको देंगे, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है गौरव जी। उसमें ये होता है कि अगर प्रैक्टिकल हम एफॉरेस्टेशन करना चाहते हैं, तो उसमें सैंपल कॉस्ट, सॉइल प्रिपरेशन, वाटरिंग और मेंटेनेंस सबको अगर मिलाया जाए और उसको 3 से 5 सालों तक कंटिन्यू किया जाए, तब जाके एक सैंपलिंग कॉस्ट जो है वो हमको 1,500 से 1,800 रुपए तक होती है, जिसमें पूरा मेंटेनेंस तक वो पूरा एक छोटे छोर से लेके वो पूरा पेड़ बन जाए तब तक हमको उसको देखना पड़ता है। तो वो एक चैलेंज इसमें है, जगह का एक चैलेंज है, और ये, और मेंटेनेंस जो है वो सिस्टमेटिक मेंटेनेंस उसका होना चाहिए और मॉनिटरिंग। तो जो हम ये अभी एफॉरेस्टेशन करना चाह रहे हैं, उसमें जो ये हमारी पर्यावरण सखी है, वो ही हमारा रियल टाइम मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस करने वाली है।
भारती जी, अमलनेर प्रोजेक्ट पर काम करते हुए सबसे बड़ी लर्निंग्स क्या रही है? एम्पावर्ड कम्युनिटीज के जरिए क्लाइमेट रेसिलियंट अर्बनाइजेशन, जो आपने अभी बताया, उसका फ्यूचर कैसा दिखता है आपको?
सबसे बड़ी लर्निंग अगर मैं देखने जाऊं तो जब तक हम सरकार, समाज और बाजार तीनों साथ में मिलके नहीं करेंगे और सिटी लेवल पे पूरे सिस्टमेटिक प्लानिंग से अगर हम काम नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा। ये हमारा लर्निंग हुआ और ये एक चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों है। स्मॉल सिटीज का जो डेवलपमेंट है उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेके ही हम उसको करें तो जो सस्टेनेबल सिटीज हम बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं।
बिल्कुल, अमल ने ये साबित कर दिया है कि छोटे शहर भी एक ग्रीनर और सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। भारती जी, फाइनल क्वेश्चन, श्रोताओं, कम्युनिटीज और स्टेक होल्डर्स के लिए कोई खास संदेश आपका?
जी गौरव जी, मैं ये मानती हूँ कि हर चैलेंज, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, एक पॉजिटिव चेंज का मौका लेके ही आता है। और छोटे शहरों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पोटेंशियल है उसको हम देखते हुए हम सरकार, समाज और बाजार तीनों मिलकर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे लिए ऐसे सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करना सही होगा जो सिर्फ इमीडिएट नीड को ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म रेजिलियंस को भी एड्रेस करेगा। ये सिर्फ प्रॉब्लम फिक्स करने की बात नहीं है लेकिन एक रेजिलिएंट सिटी बनाने की बात है जहाँ पे हर इंसान और खास तौर पे हमारी गरीब और श्रमजीवी बहनें जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है उनकी आवाज इस डेवलपमेंट में आए और उनके पास उनका अपना जो लोकल नॉलेज है और उनके अपने यूनिक सॉल्यूशंस है उसको उसको भी स्थान मिले तो ही ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो सकता है। और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन जैसे अर्बन फॉरेस्ट्री है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी, तो उससे ग्रीन स्पेसेस क्रिएट करना यही हमारी स्ट्रेटेजी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। ये सिर्फ क्लाइमेट को ही नहीं बल्कि हमारे शहरों को एक सस्टेनेबल और हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है। अर्बन फॉरेस्ट्री ना सिर्फ एक माइक्रो क्लाइमेट को इम्प्रूव करती है बल्कि हीट वेव्स को, बायोडायवर्सिटी को भी टैकल करने में मदद रूप हो सकती है। आखिर में ये सिर्फ शहर बनाने की बात नहीं है बल्कि एक ऐसी सिटी की बात है जो इंसान और प्रकृति के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करे। अगर हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशन और कम्युनिटी एम्पावरमेंट को अपनी प्रायोरिटी बनाएं तो हम एक ऐसा मॉडल शहर बना सकते हैं जो सिर्फ दुनिया के लिए ही नहीं, देश के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी एक एग्जाम्पल बन सकता है।
थैंक यू भारती जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर डीप इंसाइट्स। आपने जैसे बताया, सरकार, समाज और बाजार तीनों के ही जरूरत है क्लाइमेट रेसिलियंट सिटीज बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड ड्रॉपिंग बाय टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद अस।
थैंक यू गौरव जी।